आज हम इस सारे ख़ानदान के साथ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि उनके लिए इत्मीनान और तसल्ली का वसीला बने। जब हम पुराने अहदनामा में खुदा के बंदा दाऊद पर निगाह करते हैं तो उसका बेटा बीमारी में पड़ गया, वो बीमार था और दाऊद ने क्या रखा जी, रोज़ा रखा। वो खुदा के हजूर खाकसार हो गया, खुदा के हजूर झुक गया। उसने ना कुछ खाया ना पिया, बल्कि बड़ी ही हलीमी के साथ वो खुदा के हजूर झुका रहा। और उसका बेटा बीमारी में था तो उसके नौकरों ने उससे डरते हुए उसे नहीं बताया, लेकिन आखिर को वक्त आया कि दाऊद को पता चल गया कि उसका बेटा क्या है जी, मर गया है। जब वो उसका बेटा मर गया तो दाऊद उठा और उसने क्या किया, उसने मुंह हाथ धोया, सर में तेल डाला और खाना खाया। और उसके नौकर क्या थे जी, जो वो सब हैरान थे और दाऊद से कहते हैं कि जब तेरा बेटा बीमार था, जब तक वो जीता था, तू सोग की हालत में रहा, तू परेशान रहा, तुझने कुछ नहीं खाया पिया, अब ये क्या बात है। तो वहां पर खुदावंद का नबी, खुदा का चुना हुआ बादशाह, ऐसा प्रस्तार जिसने हमें 150 जबूर में से बहुत से जबूर दिए कि हम सब क्या कर सके, जिंदा खुदा की प्रस्तुति, इबादत, दुख में, खुशी में, बीमारी में, तंगी में, बदहाली में, जब हमारे अपने हमें छोड़ जाएं, उन तमाम हालात में जिनमें से दाऊद खुद गुजरा, और यहाँ तक कि जब हम गुनाह में से गिरते हैं और उसमें से बहाल किए जाते हैं, तो ऐसे जबूर दाऊद खुदावंद के प्रस्तार ने खुदा की हुज़ूरी में लिखे हम सब के लिए। सो वो क्या करता है, वो उठता है, खुदा की इबादत करता है, प्रस्तुति करता है। और वे एक बड़ी ही भेद की बात उसने वहाँ पर कही और वो क्या थी, उसने अपने नौकरों से कहा कि अब ये मेरे पास नहीं आएगा, बल्कि मैं इसके पास जाऊंगा। सो मुर्दे वापस नहीं आते कि वो वापस हमारे पास आए। हम सब जो मसीही हैं, वो जब जलाली बदन हासिल करेंगे, जब हम उसके जलाल में होंगे, तो हम उनके पास जाएंगे, क्योंकि वहाँ हम सब के लिए हमेशा की ज़िंदगी क्या की गई है जी, तैयार की गई है। सो इसलिए आज पालूस रसूल के वसीला से जो सच उस दौर की कलीसिया के लिए और आज हमारे लिए और हमारे आने के जाने के बाद आने वाली नस्लों के लिए लिखा गया है, ये हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम सब याद रखें कि हमें इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के लोगों की तरह नाउम्मीद नहीं होना, हमें दाऊद के नौकरों की तरह इस बात में परेशान नहीं होना कि अब क्या है। दाऊद उठता है और कहता है कि अब वो मेरे पास नहीं आएगा, बल्कि मैं उसके पास जाऊंगा, और वो जगह सुथरी और सोनी है, वो जगह जो हिस्सा खुदा ने मुकरर किया है हर फर्दे बशर के लिए जो यीशु पर ईमान रखता है। सो पहला थसलीकियों उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत से आपके लिए 18वीं आयत से पढ़ूंगा, जिसमें पालूस रसूल हम सबको जिंदा उम्मीद, जिंदा याद दिलाता है कि हम सब कहां पर होंगे। सो लिखता है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की तरह ना उम्मीद, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। अगर हम वाकिफ नहीं सच से, तो हमारी सारी जिंदगी इस बात के गम में गुजर जाएगी कि क्या होगा। इसलिए पालूस कहता है कि उन लोगों की तरह ना उम्मीद या गमगीन ना हो जिनको कोई उम्मीद नहीं। क्या कहता है जी, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं मसीह के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। सो सवाल ये है, हम में से कितने यकीन करते हैं यीशु मसीह मसलूब हुआ था, कितने यकीन करते हैं उसे कब्र में रखा गया था, कितने यकीन करते हैं कि वो अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा? अगर वो मसलूब हुआ, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, तो पारूस रसूल कहता है जैसे उसके साथ हुआ, हर एक बंदी, बंदा, बच्चा, बुजुर्ग, जवान जो यसु के इस कलाम पर, उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान रखता है, उसके साथ भी वैसा ही होगा। और इसीलिए वो कहता है, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। तो माहौल क्या होगा, तरीकाकार क्या है, बाइबल मुकद्दस में खुदा का मंसूबा किस तरह बयान किया गया है? जैसे ठीक कोई मकान बनाने से पहले बुनियाद रखता है, उस पर दीवारें उठाता है, फिर उस पर छत डाली जाती है और कमरे तरतीब दिए जाते हैं, ये हमारे बैठने की, ये सोने की, ये खाने की और ये बच्चों के खेलने की जगह। जैसे हम अपने घर का मंसूबा बनाते हैं, खुदा ने अपने बाइबल मुकद्दस में हमें क्या दिया है जी, ब्लूप्रिंट दिया है, यानी कि नक्शा दे दिया है कि होगा क्या। हम हर रोज जब कोई खबर पढ़ता है तो वो इसलिए पढ़ता है कि पता चले कि जी आरिफवाला में क्या हुआ है, लाहौर में क्या हुआ है, फलां पंजाब के इलाके में क्या हो रहा है, ताकि खबरें मिले। ऐसे ही है ना जी, टीवी भी हम इसीलिए देखते हैं कि पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहां पर कोई गवाह किया गया है, कहां पर बम धमाका हुआ है, कहां पर मसीहियों के साथ क्या हो रहा है। क्या है जी, ये नशरियात का तरीकाकार हमें बताता है आने वाले वक्त या मौजूदा वक्त के बारे में क्या हो रहा है। सो बाइबल मुकद्दस खुदा का अल्लाही खबरनामा है, उसकी जो खबरें हैं उसने कल, आज और आने वाले के बारे में सब कुछ लिख दिया है, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए ना अमीद ना हो, गमगीन ना हो, परेशान ना हो, जैसे दूसरे लोग, उनको अमीद ही नहीं कि उनके जो जुदा हो चुके हैं मसीह के बगैर उनका क्या होगा। पालूस रसूल कहता है कि मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, किसकी तरफ से कहता हूं, कहता है खुदा के कलाम के मुताबिक कहता हूं कि हम जो जिंदा होंगे, अगर यीशु मसीह आज आ जाए ना जी, मिसाल के तौर पर इस बात, इस सच को समझने के लिए, अभी वो आसमान पर जाहिर हो जाए तो माहौल क्या होगा, उसके बारे में बता दिया गया। बाजी जो कल हमें छोड़कर चली गई है वो अपने जलाली बदन में, और हम जितने हैं, हमारा जो जिस्मानी बदन है, एक पल में क्या हो जाएगा, जलाली हालत में तब्दील हो जाएगा। और माहौल कैसा होगा, ठीक जैसे पतरस, यकूब, यहन्ना यीशु के साथ पहाड़ पर जाते हैं, और जब पहाड़ पर जाते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ के लिए झुकता है तो आसमान के बादल बदल जाते हैं, और हालत क्या हुई है, यीशु मसीह की जलाली हालत है, यीशु मसीह बदन में उसकी पोशाक ऐसी हो गई, खुदा का बंदा मत्ती, खुदा का बंदा रसूल पतरस, और खुदा का बंदा, सॉरी कहते हैं कि लूका तबीब इस बात को लिखता है कि उसका, उसकी जो पोशाक थी ऐसी सफ़ेद होगी कि जैसे कभी किसी ने धोबी के साबुन से धोई ना हो, इतनी पाक और साफ हो गई। सो वहां पर कौन है, खुदावंद यीशु मसीह है, वहां पर एलिया नबी और मूसा नबी दोनों जाहिर हुए, यीशु को बता रहे हैं, वो हम सब के लिए वाक्या लिखा गया है कि जलाली बदन ऐसे होंगे। सो अगर यीशु आज आ जाए तो जो हमसे पहले, जैसे मेरा भाई यासर, जैसे बाजी, उससे पहले जितने मसीह में मर चुके हैं, सो गए हैं, वो सब जलाली बदन में, और हम जो होंगे एक मिनट में, हमारा सब कुछ जो इस दुनिया में है वो एक मिनट में जिस्मानी से रूहानी बन जाएगा, फानी से क्या होगा, गैर फानी हो जाएगा, फानी यानी कि फना होने वाला, गैर फानी जो कभी फना नहीं हो सकता। सो पालूस रसूल कहता है हम जो जिंदा होंगे और खुदावंद के आने तक बाकी होंगे, सोए से हरगिज आगे नहीं बढ़ेंगे, जो मुर्दे हैं वो जिंदा होंगे एक ही पल में, और आंख झपकते हम सब की हालत बदल जाएगी। और ये कहता है कब होगा, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकरब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे। तो खुदावंद ने अपने इस अलाही खबरनामा में जो बात जंग खबार को नहीं पता, जो बात नवाए वक्त को नहीं पता, जो खबार दुनिया को नहीं पता और उसके बारे में के क्या होने वाला है, बाइबल मुकद्दस में हमें खुदा ने अपने अलाही कलाम में पहले से बता दिया है कि नक्शा क्या है, शुरुआत कैसे हुई है, दरमियान में क्या होगा और आखिर पर क्या होगा। तो आज हम सबको, आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम क्या करेंगे। यीशु मसीह क्या आएगा जी? आसमान पर आएगा और जितने लोग जिंदा हैं वो सब तब्दील हो जाएंगे और फिर लोग क्या किए जाएंगे? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तीसरे आसमान पर जाकर, जिसे खुदा की हजूरी, जहां पर बाप इब्राहिम की गोद कहा गया है, जहां पर लाखों करोड़ों फरिश्तगान अभी इसी वक्त क्या कर रहे हैं, उसे कदूस कदूस कदूस, खुदावन खुदा जो था, जो है, जो आने वाला है, खुदा का बर्रा जो मसलूब हुआ, जिसके ऊपर जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, वहाँ पर क्या करें? मकाशवा 5 के मुताबिक उसकी तमजीद, उसकी तारीफ, उसके नाम को इज्जत और जलाल, और हर एक 2400 घंटे बगैर आराम किए उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये आसमान का माहौल बड़ा ही खूबसूरत है, उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता मैं। ये ऐसी जगह है जहां पर दुख नहीं होगा, मुसीबत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, फिक्र नहीं होगे, आंसू नहीं होंगे, जलाल ही जलाल होगा, सोने की सड़कें। और बहुत से लोग शकीन हैं जी के मेरे पास जमुर्द हो, मेरे पास फरोजा हो, मेरे पास नीलम हो, मेरे पास हीरा हो। मेरी ख्वाहिश है, और मेरी पिछली जो 10वीं सालगिरह था मेरी और मेरी बीवी की शादी की, तो मेरी बीवी ने मुझे दो तोहफा दिया, उसने अंगूठी दी जिसमें नीलम और उसने दो हीरे लगा कर मुझे दिए। और मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि नीलम, मैंने कहा कि अब्दियत को नीला आसमान जाहिर करता है और हीरा खुदा की पाकीज़गी को, इसलिए उसने मेरे लिए क्या बना कर दिया जी? इस अंगूठी को। तो यहां पर तो हमें नकली नग मिल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, जुवारी जो जोहर का काम करते हैं, लेकिन आसमान पर वो 12 के 12 पत्थर जो 12 कबीलों की पहचान इसराइल के आज भी काहिनों के सीने पर लगे हैं, वहां पर माहौल बड़ा जबरदस्त होगा। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह को हम रूबरू देखेंगे, करोड़ों फरिश्तों के साथ क्या होगी? उसकी इबादत होगी। सो इंसान आसमान पर उठाए जाएंगे, तीसरे आसमान पर लिखा है 17वीं आयत में, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का क्या करें? इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। और पालूस कहता है पस तुम इन बातों से एक दूसरे को क्या दो जी? तसल्ली दो। आज खुदा का खादम होते हुए मैं आपसे ये बात इसीलिए कर रहा हूं कि हमारी तसल्ली किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। हमारे साथ वादा किसने किया है? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने नहीं किया जो बात बात में बदल जाते हैं, किसी सियासतदान का वादा नहीं है, ये वादा यीशु मसीह का है और उसके बारे में लिखा है, वो कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इंसान होते हुए मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं गलती कर सकता हूं, मैं वादा करके मुकर सकता हूं, खुदा कभी भी अपने वादों में मुकरता नहीं। सो ये हो गई हमारी जिंदा उम्मीद, ये है हौसला भाई जफर के लिए, उनकी अम्मी के लिए, बाजी की अम्मी के लिए, बाजी के भाइयों के लिए, देरों के लिए, जेठों के लिए, सबके लिए, कि वो उस जगह पर है जहां पर वो बड़े सुकून और आराम में है। क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि फिर याद दिलाता हूं सैमुअल की, जब रूह को उस जादूगरनी ने बुलाया तो पहली बात सैमुअल ने क्या कही? तूने मुझे क्यों बेजार किया, बे आराम किया, मैं आराम की जगह पर था। लाजर का वाक्य हमें याद दिलाता है, अमीर आदमी क्या कहता है? लाजर को भेज और क्या था जी? अमीर आदमी अजाब की जगह और गरीब लाजर खुदा के इत्मीनान में, जहां पर वो इब्राहिम बाप की गोद में है। पालूस रसूल कहता है, वो इसलिए इस भेद को लिखता है, पालूस रसूल तीसरे आसमान तक उठाया गया। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कहती है, दूसरा करंथियों जब हम उसका 12 बाब पढ़ते हैं तो पालूस रसूल कहता है, वो कहता है मैं फख्र कर सकता हूँ, मैं लोगों के सामने शोखी मार सकता हूँ लेकिन नहीं। वो कहता है कि मुझे फख्र करना हो तो अगरचे मफीद नहीं, पस जो रोया और मकाशवे खुदाबंद की तरफ से अनायत हुए उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया। तीसरा आसमान बाइबल मुकद्दस में खुदा की वो हजूरी, वो तख्त वाली जगह है जहाँ पर वो तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। हम उसके साथ उसकी परस्तिश करेंगे। और वो कहता है मुझे ये मालूम नहीं कि बदन समेत या मालूम नहीं कि बदन के बगैर, ये खुदा को मालूम है। बाइबल मुकद्दस में बहुत कम लोग हैं जो इस जगह पर गए और वापस आए। हम देखते हैं यूहन्ना का मुकाशवा, जो यीशु मसीह का मुकाशवा की किताब लिखने वाला खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल, वो शिगिर्द जो यीशु की सलीब पर था, जिसके लिए यीशु ने अपनी माँ से कहा कि तेरा बेटा ये है और तेरी माँ ये है अपने मसलूब होने से पहले। तो आखिरी शिगिर्दों में से वो आखिरी शिगिर्द है जिसने आखिर पर शहादत पाई और वो तीसरे आसमान तक उठाया गया, इसलिए उसने आसमान की बातें लिखी। उसके बाद पालूस रसूल है जिसने आसमानी शहर को देखा, इसीलिए जब वो वापस आया तो वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है जी, नफा है। अगर मैं जमीन पर, वो कहता है जीऊंगा तो मेरा मकसद क्या है, मसीह के लिए। अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरे लिए नफे की बात है, फायदे की बात है, मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात होगी कि मैं उस जगह से जहां से वो वापस आना नहीं चाहता था तीसरे आसमान पे वापस आया। और वो कहता है खुदा को मालूम है, यकायक फरदौस में पहुंचा। तीसरा आसमान कौन सी जगह है? खुदा का फरदौस, जिसे हम जन्नत कहते हैं, जिसे हम सुकून की जगह कहते हैं, जहां पर खुदा अपने अरबों करोड़ों फरिश्तों के साथ, फिर कहूँगा लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, उसकी पाकीज़गी को, उसकी खूबसूरती को, उसके शानदार होने को, उसके मर्तबा को। वो कहता है यकायक फरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका आदमी को कहना रवा नहीं। उसने बहुत से भेद नहीं लिखे जो खुदा ने उसे मना कर दिया, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये खबरनामा हमें खबर देती है कि आज से 6000 साल पहले क्या हुआ, आज से 2000 साल पहले क्या हुआ, गुलगत्ता की पहाड़ी पर जिसे खोपड़ी की जगह कहते हैं, आज से बताती है कि 2000 साल पहले अरमितिया का रहने वाला शहर, जिस शहर का रहने वाला यूसुफ, जिसने अपनी कब्र यीशु के लिए दी, आज वो कब्र खाली है, आज वो बाग मौजूद है जहां पर यीशु ने कहा ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज वो पहाड़ बाकी है जिस पर जब तमाम शिगिर्द यीशु को देख रहे थे जैसे वो आसमान पर जा रहा है, उस पहाड़ पर जाने का खुदा ने मुझे मौका दिया। और उस पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब आसमान पर ज़ौक फरमाया, जब आसमान पर चले गए तो दो फरिश्ते नीचे आकर कहते हैं कि ऐ गलीलियो क्या देख रहे हो, जैसे तुम इसने इस यीशु को जाते हुए देखा है वैसे ही वो वापस आएगा। और वो जैतून का पहाड़ मौजूद है इसराइल में। सो ये सब सच बताने का मकसद क्या है? पहली बात, हम ना उम्मीद ना हो। दूसरी बात, हम किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, ना उम्मीदों की तरह या फिर उन लोगों की तरह। ये बात बड़े दुख से कहना पड़ती है, हम मसीही बहुत दफा क्या करते हैं, हफ्ते में एक दफा खुदा के हजूर घर जाते हैं, अतवार की इबादत, वहां पर कहते हैं अब्बा आसमानी बाप, कादरे मुतले खुदा, लश्करों के खुदा, और तू मेरा खुदा है, और 6 दिन ऐसी हालत होती है जैसे हम अपने बाप को जानते ही नहीं। तो हम ना अमीदी में जिंदगी बसर ना करें, हम ऐसे मसीही बने कि लोग दूर से देख कर कहें कि इसके चेहरे पर यीशु का नूर है। और इसके लिए क्या करना होगा? खुदावन मुझे धोकर पाक और साफ कर। खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर। हम सब कमज़ोर हैं, हम सब की कमज़ोरियों में ज़ोर कौन है? यीशु मसीह। पालूस हमारे जैसा ही बंदा था, एलिया हमारे जैसा ही बंदा था, खुदा का खौफ और तर्स मानने वाला। हमें ऐसी कलीसिया बनने की ज़रूरत है जो एक दूसरे के हमदर्द बने। इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ, गिरजा बनाने से पहले बथेरे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पादरी साहब ने ये जगह ले ली है, खुदावंद आपको बरकत दे। गिल फैमिली की जगह पर खुदा ने क्या बनाया है? अपना मकदस बनाया, जिस पर आज हजारों लोग ना सिर्फ यहाँ वहाँ पर जो पैगाम जैसे ये चल रहा है इससे लाखों लोग सुनते हैं। इंडिया में ये पैगाम सुनाया जाएगा, इंडिया में जा नहीं सकता लेकिन आवाज़ जाएगी। तो बथेरे लोगों ने कहा कि पादरी साहब ने ये जगह ली है, जैसे बथेरे दूसरे करते हैं ये भी क्या करेंगे? अपनी कोठी बनाएंगे। मेरी कोठी मैं यहां पर नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी कोठी, मेरा बंगला कहां पर हो? यीशु मसीह की हजूरी में हो, जहां पर मैं पतरस के साथ, पालूस के साथ, मूसा नबी के साथ बैठ कर खुदा के कलाम की जो बातें इस जमीन पर मुझे नहीं समझ आई पूछ सकूं। इसलिए इस दुनिया में नहीं, मैं आसमान पर, आसमान पर चाहता हूं कि मुझे भी एक शहर पर हुकूमत करने को मिले, मुझे भी 10 शहरों पर हुकूमत करने को मिले। सो आज का कलाम, उसका खुलासा, उसका निचोड़ क्या है? कि हम जब खुदा की हजूरी में जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे या फिर अपने साथ कुछ ऐसा अजर या बदला होगा जो हम उसे पेश करेंगे। इंसान होते हम सब कहते हैं रोटी मकान फिक्र है हर एक चीज की, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हम अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं, आसमानी बाप कहते हैं, लेकिन बहुत दफा उसके हाथ पर यकीन नहीं करते। तो पादरी फैसल हो सकता है आने वाले दिन में, आने वाले हफ्ते में, हो सकता है इस इबादत के बाद ही इस दुनिया को छोड़कर यीशु के पास चला जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम इस जमीन पर किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं तो अक्सर लोगों को बताता हूं कि अभी खुदा ने मुझे पाकिस्तान में भेजा है, खुदा मुझे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में। खुदा के लोग कहते हैं कि पाई साहब आकर यहां पर चर्च शुरू करो, ये यहां पर आपकी नस्ल के लिए है। लेकिन ये तो मेरा दावा है, ये मेरी इबादत है, ये मेरा कहना है। हम किस चीज को पकड़े हुए हैं? अगर हमने दुनिया को और खुदा को दोनों को पकड़ा हुआ है तो फिर आज सोचने की ज़रूरत है कि हम किसके लिए ज़िंदगी बसर करेंगे। सो खुदावंद हम सबको इस बात पर सोचने की कुव्वत और ताकत दे, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ कि उसकी हजूरी में जाऊँ तो यीशु मसीह कहे कि मैंने तुझे 5 तोड़े दिए तो मैं उन 5 तोड़ों के साथ कहूँ यीशु मैंने 10 कमाए। आप भी कहने वाले बने, हाँ यीशु 5 के साथ मैंने 10 और 10 के साथ 20, ताकि वो कहे जैसे बहूजी ने कहा, मुबारक हो मेरे बाप के प्यारो, आओ और उस बादशाही को लो जो मेरास में तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो गिल फैमिली में जगह दी है इसमें जितनी बरकत लोगों को मिलती है ये उनके हिस्सेदार हैं। इसलिए जो कुछ हम करते हैं उसका हिस्सा खुदा जो हिसाब किताब रखता है वो अपनी किताब में लिखता है। सो खुदावंद आज इस खानदान के वसीला से हम सबको इस कलाम के वसीला से क्या दे जी? हिकमत और दनाई दे कि हम कैसे जिंदगी बसर करेंगे, कैसे बसर करेंगे जब हम उसकी हजूरी में जाएंगे। जैसे हमारी बहन पहुंच गई, उससे उसने जो नेकी, जो भलाई की है, जो खुदा के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी है वो सब खुदा के सामने उसको उसका अजर मिला है। हम क्या देंगे? हमें कौन कौन सा तोड़ा मिला है? क्योंकि मुझे जो तोड़ा मिला है अगर उसे मैं छुपा कर कहूँ कि मैं अमेरिका में चला गया हूँ, अमेरिका में खुशबाश रहूं, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, मुझे यहाँ पर क्यों गर्मी में धूल मिट्टी और लोगों से मुलाकात करनी, मैं अमेरिका में एसी वाले कमरे में 24 घंटे रह सकता हूं। लेकिन मुझे ये तोड़ा खुदा ने दिया है कि अमेरिका में भेजा है ताकि अपने लोगों को ना भूलूं, जिस तरह मूसा अपने लोगों को नहीं भूला। वो फ़राउन के घर में बादशाह की तरह रहा, लेकिन वो अपने लोगों को नहीं भूला। हम भी एक दूसरे को ना भूलें। इस दुनिया में हमने सिर्फ एक दूसरे को ही पाया है, बहन भाइयों वाली मोहब्बत, एक दूसरे के हमदर्द बने, एक दूसरे से मत जलें, एक दूसरे की चुगली ना करें, एक दूसरे की हमदर्दी करें, एक दूसरे के लिए भला चाहें। यही मसीही जिंदगी के वो क्या हैं जी, आला किस्म के वो जेवरात है जो हम खुदा की हुजूरी में कहेंगे, खुदावंद मैंने मोहब्बत की, मुझसे नहीं की गई, खुदावंद मैंने माफ़ किया, मुझे माफ़ नहीं किया गया, खुदावंद मेरे दामन पर कीचड़ उठाला गया, मेरी चुगली की गई, मैंने चुगली नहीं की। और खुदावंद कहता है कि जब हम उसकी हुजूरी में आएंगे तो हर एक का हाल जाहिर किया जाएगा। तो आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि जब हम उसकी हुजूरी में आएंगे, जो तोड़ा उसने आपको दिया है, कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई बरकत नहीं दी। उसने आपको तोड़ा तालीम का हो सकता है, मोहब्बत का हो सकता है, खिदमत का हो सकता है, हौसला अफजाई का हो सकता है आपसे खुदा कोई और चीज मांग रहा हो कि उसके जलाल के लिए दिया जाए, ताकि आपका अजर आसमान पर बड़ा हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे कि हम ना उम्मीदों की तरह और ऐसे लोगों की तरह जिंदगी बसर ना करें जिनको कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि तूने हम सब के लिए अपना खबरनामा, अपना तमाम मंसूबा बता दिया है कि तू आएगा और अपने लोगों को साथ ले जाएगा और इस ज़मीन पर फिर हज़ार साल बादशाही होगी, और उस हज़ार साल बादशाही के बाद तू फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने लोगों के दरमियान होगा, और तेरा खैमा तेरे लोगों के दरमियान होगा, और तू अपने लोगों की तमाम आंखों के आंसू पूछ देगा। वहाँ पर मौत नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, हम जलाली बदन में होंगे और कभी दोबारा मौत को नहीं देखेंगे, बल्कि खुदावन तेरी इबादत तेरी अकीदत हमेशा हमेशा के लिए करेंगे और तुझसे सीखते रहेंगे। सबको खुदावंद इत्मीनान और तसल्ली दे। भाई जफर के लिए खुदावंद तेरा इत्मीनान और तेरी तसल्ली चाहता हूँ, उनके बच्चों के लिए कि खुदावंद तू हमारा बाप और हमारी माँ है जो हमारी हमदर्दी हमारी रहनुमाई करता है। इस कलाम के वसीला से हम सबको छू बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।